ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की दो दिनों की यात्रा पर अबुजा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री तीन देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर गए हैं। पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचने पर राजधानी अबुजा में उनका भव्य स्वागत किया गया। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की यह पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबु के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अन्य उपायों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया बढ़ते आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग के साथ 2007 से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं। नाइजीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने $27 अरब से अधिक का निवेश किया है। प्रधानमंत्री नाइजीरिया से G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने 18 तारीख को 2 दिवसीय यात्रा पर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो जाएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा इस सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और G20 नई दिल्ली घोषणा के परिणामों के अनुरूप उठाए गए कदमों के साथ ही भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों की भी चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर श्री मोदी के कई नेताओं से मुलाकात की भी संभावना है। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वे मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में स्थिति नाजुक बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों समुदायों के शरारती लोग हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिससे कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। जो लोग हिंसा या तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की गतिविधियों की जांच राष्ट्रीय जांच अभिकरण को सौंप दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों को सहयोग करें। इस बीच राज्य के इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थाउबाल, कांगचिंग और बिष्णुपुर सहित 5 घाटी जिलों में अनिश्चितकाल के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 जिलों में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत पर भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों के बाद आयोग ने यह नोटिस जारी किए हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के स्टार प्रचारकों पर आरोप लगाया था कि वे प्रचार अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग ने इस सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजे हैं। आयोग ने सोमवार दोपहर बाद 1 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। झारखंड में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दुमका, देवघर और गिरिडीह में श्री शाह ने कहा कि यूपीए सरकार में राज्य के आदिवासियों के कल्याण के लिए धनराशि का आवंटन नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जामताड़ा और खिजड़ी चुनाव प्रचार में आरोप लगाया है कि भाजपा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। जाने माने सरोद वादक आशीष खान का निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। बृहस्पतिवार को अमेरिका के लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके भाई आलम खान ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके निधन की सूचना दी। 1939 में मध्य प्रदेश के मैहर में उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।